તારીખ 5/3/1996 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ચોથા અધિકાર ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મહાવીરજીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 9
મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક કા ચોથા અધિકાર હૈ ચોથા અધિકાર મેં પંડિત ટોડરમલજી ને मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण किया है। यह प्रकरण मुमुक्षु के लिए प्रयोजनभूत है, क्योंकि किस प्रकार से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन हो रहा है उस विषय में उन्होंने तत्व दृष्टि से बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। उसमें भी प्रकरण का उपोद्घात करते हुए उन्होंने प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत जानने के विषय में बहुत सुंदर चर्चा मुमुक्षु की भूमिका के सफलता और निष्फलता का आधारभूत कोई बात है तो वो है कि अपना प्रयोजन को यथार्थ रूप से नहीं समझने से और अप्रयोजनभूत विषय में उलझने से निष्फल होता है सब कुछ करते हुए भी। जैसे कि कोई मुमुक्षु ऐसा है कि जो जीवन भर बुढ़ापा आने तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करता रहता है, फिर भी उनको जब आत्मज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती तो इसका कारण क्या? ऐसा कोई सीधा प्रश्न का उत्तर वह है कि तत्वज्ञान के अभ्यास के दौरान उसने वर्तमान अपने प्रयोजन अपनी भूमिका में कौन सा प्रयोजन की बात हमारे लिए आई और हमारा बिगाड़ सुधार किस तरह हो रहा है, ऐसा जो प्रयोजनभूत मुद्दा है उस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अभ्यास करता रहा उस विषय पर पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह ध्यान खींचा है। तो ये अधिकार के प्रारंभ में एक दोहा लिखा है, इस भाव के सब दुखने के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगति मोक्ष उपाव। भव के सभी प्रकार के दुख के कारण तो मिथ्यात्व भाव है, मिथ्यात्व भाव कहो या दर्शन मोह कहो एक ही बात है। इसकी सत्ता नाश करके, मिथ्यात्व की सत्ता का नाश करके मोक्ष का उपाय प्रकट होता है। अब यहां संसार दुखों के बीज भूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। संसार के सभी दुखों के बीजभूत कारण जो है वो मिथ्यात्व है, मिथ्यापना है। वो मिथ्यापना श्रद्धान में भी होता है, ज्ञान में भी होता है और चारित्र में भी होता है। आत्मा के तीन ये मुख्य गुण हैं। आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन ये तीन गुण की मुख्यता है। संसार के परिभ्रमण में इसके विपरीत परिणमन की मुख्यता है और मोक्ष जाना में उनकी सम्यक परिणमन की मुख्यता है। बाकी के गुण इनके पीछे पीछे परिणमन करते हैं। जैसे वैद्य है तो रोग के कारणों का विशेष रूप से कहें तो रोगी कुपथ्य सेवन न करें, तब रोग रहित हो। दृष्टांत दिया है कि किसी मरीज को रोग रहित करना हो तो रोग का निदान पहले करना पड़ता है। ये रोग क्यों हुआ और किस प्रकार का रोग चल रहा है, इसका निदान के बिना इसका उपाय सही हो सकता नहीं। और निदान करने से जो भी कुपथ्य है, क्यों रोग हुआ, किस कारण से हुआ, इस कारण का त्याग कर सकते हैं। उस दृष्टांत के अनुसार यहां संसार में कारणों का विशेष निरूपण करते हैं। संसार के कारण है उनका निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्व आदि का सेवन न करे, उस मिथ्यात्व को यहां दिखाएंगे तब संसार रहित हो। इसलिए मिथ्या दर्शन आदि का विशेष निरूपण यहां करने में आ रहा है। उसमें सबसे पहले मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहेंगे, फिर मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहेंगे, फिर मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहेंगे। बहुत व्यवस्थित रूप से पंडित जी का ये शास्त्र में प्रतिपादन हो रहा है। यहां जीव अनादि से कर्म संबंध सहित है। अनादि से जीव और कर्म का संबंध, संयोग संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध चला ही आ रहा है। उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धा, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। प्रकृति में भी दर्शन मोह का उदय है और भाव में भी दर्शन मोह का उदय है। दर्शन मोह की एक प्रकृति ही ऐसी है कि जिसके उदय से भाव में अवश्य मिथ्यात्व होवे होवे और होवे ही। दूसरे कर्म के साथ जीव के परिणमन का कोई ऐसा खास प्रकार का संबंध यानी बंधन नहीं है। फिर से कि जैसे कि क्रोध प्रकृति का उदय हो और जीव आत्मा में आत्मा का अवलंबन ले तो उसको क्रोध नहीं होगा। लेकिन दर्शन मोह का उदय हो और जीव के दर्शन मोह के परिणाम न हो, ऐसा नहीं बनता। और ये मिथ्यात्व जो दर्शन मोह का मिथ्यात्व का प्रयोग उदय है वो तो निरंतर चालू रहता है संसार अवस्था में। एक समय के लिए भी बंद नहीं होता किसी को भी। जब यही परिस्थिति है कि द्रव्य कर्म में दर्शन हो के प्रकृति का उदय हो और जीव अपना भान नहीं भूले, ऐसा बनता ही नहीं। जीव अपना भान भूल जाता है और उसको नियम से मिथ्या श्रद्धान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है और मिथ्या चारित्र भी सहज रूप से हो ही जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें, ये सवाल होता है पहला कि इस पर ये तो बलवान प्रकृति है, अनंत प्रकार के जो कर्म की प्रकृति है उसमें सबसे बलवान ये है। बलवान मैंने कि इसके उदय में जीव को झुकना ही पड़ता है, इसके प्रति रह नहीं सकता। जो यही परिस्थिति है तो फिर जीव को क्या करना है इसके छूटने के लिए, उदय तो निरंतर चालू रहता ही है और स्थिति भी इसकी सबसे ज्यादा पड़ती है, अनुभव तो ज्यादा है ही, ताकत तो ज्यादा, अनुभव मैंने फलदान शक्ति ताकत वो तो ज्यादा है ही, लेकिन इसकी स्थिति भी सबसे ज्यादा पड़ती है। सबसे उत्कृष्ट स्थिति दर्शन मौके होती है, 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति दूसरे कर्म की प्रकृति की नहीं होती कभी, ऐसे बलवान है। तो ज्ञानियों ने उसका उपाय भी निकाला कि पहले तो इसके बल को खत्म करो। ये पॉलिटिक्स में क्या करता है, क्या होता है, माथा भरे हो जाता है तो इनके सपोर्टर को काटते हैं, उसको कमजोर बना देते हैं, इसकी ताकत को तोड़ते हैं। जिस जिस प्रकार की इसकी ताकत है उसको तोड़ो। पैसा वाला हो गया तो इनकम टैक्स का रेट ले जाओ, और इनके पक्षकार ज्यादा हो तो उनको तोड़ो, जैसे कैसे भी पैसा दे करके वो करके वो करके वो करके। ऐसे मिथ्या को कर्म दर्शन मोह को कमजोर किया जाता है, और ये कमजोर करने का जो समय है वो मुमुक्षु की भूमिका का समय है। सच्ची मुमुक्षुता जब से उत्पन्न होती है तब से दर्शन मोह है, उसकी ताकत उसका अनुभाग है वो टूटता जाता है, और इसकी स्थिति भी कम होती जाती है। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व का बंध हुआ हो और ये लब्धि के प्रकरण में आते हैं, प्रायो लब्धि लब्धि में कोई जीव आता है, मैंने कुछ योग्यता में आता है, तो 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर इसकी स्थिति हो जाती है, वो भी बहुत लंबी है, फिर भी ये एक लब्धि के प्रकरण में संकेत है इस बात का कि अगर कोई जीव आत्म कल्याण के लिए खड़ा होता है, तैयार होता है, तो सबसे पहले उसका दर्शन मोह है, उसकी स्थिति और अनुभव घटता है। ऐसे उसको कमजोर यथार्थ रूप से और यथाक्रम से, क्रम भी यथार्थ होना चाहिए और कार्य पद्धति भी यथार्थ होनी चाहिए भावों की, तो ये कमजोर होता 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 एक ऐसी अवस्था में आता है कि उसको दबना पड़ता है। जीव के सर्वसम्मुख पुरुषार्थ का निमित्त पा करके सम्यक्त सम्मुख भूमिका में वो यथार्थ रूप से जब दब जाता है तो उसका शास्त्र भाषा में उपशम ऐसा नाम दिया जाता है, और उसी वक्त उपशम नामक सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। उसको उपशम तक कैसे ले जाएं, ये मुमुक्षु को समझने का खास प्रयोजनभूत विषय है। इसलिए यहाँ पंडित जी ने प्रयोजनभूत विषय और अप्रयोजनभूत विषय क्या क्या है इस पर बहुत सुंदर चर्चा की है। और गुरुदेव जी ने भी जब प्रवचन किए हैं इस अधिकार पे तो बहुत अच्छी बातें निकाली हैं, वो भी अपन थोड़ा इसका संदर्भ लेंगे, इसका रेफरेंस में गुरुदेव के वचन का भी स्वाध्याय करेंगे। क्या कहा कि दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, पंडित जी ने क्या कहा कि दर्शन मोह का कर्म का उदय हुआ और उसके कारण से, उसके निमित्त से कहो या उसके कारण से कहो, जीव के परिणाम में ए तत्व श्रद्धान हुआ उसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धान, उल्टा श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान। क्योंकि तदभाव सो तत्व, तत्व किसको कहते हैं, तदभाव, तत् में त्व लगाया है, तत् में भ लगाता है, इसमें पना बोलता है तत्पना, तो तदभाव सो तत्व है, जिसमें जो भाव है वो उसी का तत्व है, तत्पना तेपना। अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य है, योग्य अर्थ है, जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव या उसका जो स्वरूप उसका नाम तत्व है। फिर से, जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है उसका जो भाव है, उसका जो स्वरूप है उसका नाम तत्व कहते हैं या तत्वार्थ कहते हैं। तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है, जिसमें जैसा भाव नहीं हो वैसा उसका श्रद्धान करे तो वो अतत्व श्रद्धान है, जिसमें जैसा भाव और स्वरूप है वैसा उसका श्रद्धान करे उसको तत्व श्रद्धान कहते हैं। इसलिए अतत्व है वह असत्य है, क्योंकि ऐसा तो भाव और स्वरूप है ही, अतत्व है वो असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या भी है, असत्य का नाम मिथ्या भी है। तथा ऐसे ही है, ऐसा ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव उसका नाम श्रद्धान है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही है, ऐसा प्रतीति भाव, वो प्रतीति भाव को सत्य श्रद्धान कहते हैं। यहां श्रद्धान जी का नाम दर्शन है, इस प्रकरण में श्रद्धान का नाम दर्शन शब्द से लिया गया है, जबकि दर्शन शब्द के दूसरे भी अर्थ है, दर्शन शब्द के दूसरे भी अनेक अर्थ है, उसमें यहां पर श्रद्धान की बात चल रही है तो दूसरे अर्थ यहां लगाना नहीं है। दर्शन मैंने देखना, ये भी दर्शन का अर्थ होता है, वो यहां बात नहीं चल रही है, यहां दर्शन माने श्रद्धान लेना है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, मैंने देखना ये भी तो है, तथापि यहां प्रकरण वश इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना, यहां जो प्रकरण चलना है तो यही धातु का अर्थ यहां श्रद्धान लिया गया है। पंडित जी जानते हैं कि इसका अर्थ, प्रचलित अर्थ तो सामान्य अवलोकन कहते हैं, विशेष अवलोकन को ज्ञान कहते हैं, आत्मा के चैतन्य के विशेष अवलोकन को ज्ञान कहते हैं और सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ वो बात नहीं लेनी है। ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है, सामान्य अवलोकन की बात। सर्वार्थ सिद्धि नाम की जो तत्वार सूत्र की टीका है, तत्वार सूत्र भगवान उमा स्वामी का रचित एक आधारभूत ग्रंथ है दिगंबर आचार्यों में और ग्रंथों में, ये एक आधारभूत माना गया है। उनकी बहुत सी टीका हुई है, उसमें एक पूज्यपाद स्वामी हुए आचार्य बड़े, उन्होंने जो टीका की है उनका उस टीका का नाम सर्वार्थ सिद्धि है। और भी इनकी टीकाएं हैं, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, और भी टीकाएं हैं इनकी, अच्छी अच्छी टीकाएं बनी हैं इस ग्रंथ पर। क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, या क्यों दर्शन का अर्थ श्रद्धान करते हैं और सामान्य अवलोकन क्यों नहीं करते हैं, इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता। जो दर्शन उपयोग जिसको कहते हैं, सामान्य अवलोकन को क्या कहते हैं, दर्शन उपयोग, वो कोई संसार मोक्ष का कारण नहीं है, न वो संसार का कारण है नहीं वो कोई मोक्ष का कारण है। सभी जीव को ये होता है, केवल को भी होता है और सामान्य जीव को भी, संसार के जीव को भी ये होता है। केवल को केवल दर्शन के रूप में होता है और सामान्य जीव को सामान्य दर्शन के उपयोग के रूप में होता है, वो संसार मोक्ष का कारण नहीं है। श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। जो मिथ्या श्रद्धान है, मिथ्या दर्शन है, ये संसार का कारण है, और सम्यक दर्शन यानी सम्यक श्रद्धान है, ये मोक्ष का कारण है। इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना। जहां जहां दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ हो और प्रकरण चलता है संसार या मोक्ष का कारण, तो वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान लेना। जैसे कि उमा स्वामी का प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये पहला सूत्र है प्रथम अधिकार में। तो वहां सम्यक दर्शन माने सम्यक श्रद्धान लेना, क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण चला है, वहां दर्शन उपयोग नहीं लेना है। तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात मिथ्या रूप जो श्रद्धान, उसका नाम यहां मिथ्या दर्शन कहेंगे। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, श्रद्धा क्या करती है, मानने का काम करती है। तो जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना और जैसा है वैसा नहीं मानना, दोनों एक साथ होता है। नहीं है ऐसा मानना और है ऐसा नहीं मानना, अस्ति नास्ति से ये मिथ्या अनेकांत है। ऐसा विपरीत अभिनिवेश, ऐसा विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय, उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। अब क्या पंडित जी आगे बढ़े इस विषय में कि मिथ्या दर्शन किस कारण से हुआ, तो विपरीत अभिनिवेश के कारण से हुआ। अभिनिवेश माने क्या कि अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय, ये अभिप्राय ज्ञान की पर्याय है। तो मिथ्या ज्ञान पूर्वक मिथ्या दर्शन होता है, इसलिए सही ज्ञान पूर्वक सही सत्य दर्शन, सत्य श्रद्धान होता है। क्या कहा कि ऐसा जो मिथ्या मानना होता है, विपरीत मानने का होता है, ऐसा विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय उसको लिए हुए उसी कारण से होता है, मिथ्या दर्शन होता है। परिणाम में अभिप्राय की बहुत बड़ी भूमिका है, अभिप्राय का रोल बहुत बड़ा है। हम सभी प्रकार के परिणाम में, चाहे संसार के हो चाहे मोक्ष मार्ग के हो, यहां एक प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते। इस ग्रंथ में पंडित जी की जो ग्रंथ के रचने की रचना करने की जो पद्धति है वो प्रश्नोत्तर रूप में है। बहुत सुंदर पद्धति उन्होंने अपनाई है, बड़े बड़े आचार्यों ने भी ऐसी पद्धति ली है परमागमों में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि किसी भी विषय समझने के लिए प्रश्न होना आवश्यक है। क्या प्रश्नकार की भूमिका क्या होती है इसका विचार करें तो जब जिज्ञासा में आता है तब तो प्रश्न करता है। जिज्ञासा की भूमिका प्रश्न को खड़ा कर देती है। और जिज्ञासा की भूमिका में क्या होता है कि विचार की भूमिका में सत्य को ग्रहण करने की और सत्य का स्थान पाने की एक खाली जगह अवकाश पैदा होते हैं। चूंकि संसारी जीव संसार में अनेक प्रकार के विपरीत संस्कार लेकर के बैठा है, जैसे यहां हम सैकड़ों लोग शास्त्र के विषय को सुन रहे हैं, मोक्ष मार्ग के विषय को सुन रहे हैं, तो हरेक के पूर्वग्रह हरेक के संस्कार अलग अलग है। सब एक सी योग्यता में नहीं सुन रहे हैं और ऐसे संस्कार बहुत बहुत भरे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में सत्य का श्रवण होता है तो वो सत्य स्थान सत्य को स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी एक सवाल है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि कुछ खाली जगह हो जाए कि सत्य अपना स्थान को प्राप्त करें, और वो खाली जगह जिज्ञासा की भूमिका में होता है। और जिज्ञासा जब होती है तो प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसलिए जब जब तत्व श्रवण का प्रसंग हो तब तब प्रश्न होने की आवश्यकता भी है। एकांत ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को प्रश्न करना ही नहीं, ये पाबंदी योग्य नहीं है। जबकि प्रवचन के व्यवस्थापकों को कभी कभी ऐसा लगता है कि बीच में प्रश्न नहीं होना, लेकिन हमारे विचार हमारे अभिप्राय थोड़ा सा अलग है उसमें, कि प्रवचन के दौरान भी उसी प्रवचन के को अधिक खोलने के लिए या अपनी कोई जिज्ञासा के लिए प्रश्न होना जरूरी है। वो प्रश्न हुए उसी काल में उसको उत्तर मिले वो भी जरूरी है, क्योंकि अवकाश तो उसी वक्त हुआ है। जब खाली जगह हुई तो उसी वक्त फिल अप द गैप, उस गैप को पूरा कर दो उसी वक्त करो। जब तृषा लगी है तभी पानी दो, भूख लगी है तभी खाना दो, भूख मर जाए फिर खाना दो, क्या मतलब है इसका? इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रश्न भी आवश्यक तो है ही, और इसी मुद्दे पर टोडेंगल जी साहब ने और बड़े बड़े आचार्यों ने जब विषय गंभीर होता है तब प्रश्न उठाते हैं। जैसे समय सार की छठी गाथा ले लो, तो छठी गाथा में के उनके आप जो प्रतिपादन है उसके पहले टीकाकार आचार्य श्री ने प्रश्न उठाया कि ऐसा कौन सा आत्मा है, गायक आत्मा ऐसा कौन है कि जिसको जानने जरूरी लगता है, ऐसा प्रश्न उठाया। फिर उसका उत्तर दिया है, 49 गाथा के पहले भी प्रश्न उठाया है, ऐसे बहुत से गाथा के पहले वो प्रश्न उठाते हैं, फिर सूत्र का अवतरण करते हैं कि पूर्वाचार्य ने ऐसे प्रश्न के संदर्भ में ये गाथा दी है, ये ऐसे प्रश्न के उत्तर में दी गई हुई गाथा है, ये भी जरूरी होता है। इस ग्रंथ की तो प्रश्न जिज्ञासा प्रश्न का कारणभूत है, जिज्ञासा के वशात प्रश्न पैदा होता है। मैं इनका प्रश्न दोहराता हूं, प्रश्न तो प्रश्न है वो जिज्ञासा के कारण उत्पन्न होता है, और तर्क है वो बहुभाग कौतूहल के कारण से उत्पन्न होता है। कौतूहल में मंद जिज्ञासा है और तीव्र जिज्ञासा में प्रश्न खोड़ा होता है, और तर्क में अनेक प्रकार होते हैं। तर्क में न्याय को छोड़कर के भी तर्क आता है उसको कुतर्क कहते हैं, और न्याय संगत तर्क आता है उसको सुतर्क कहते हैं। तो कुतर्क करने लायक नहीं है, सुतर्क तो प्रश्न की जगह में है, वो अच्छा ही है, करना भी होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जिनागम में प्रवचन सार में आचार्य से कहते हैं कि ये विशुद्ध तर्कणा से सिद्ध हुआ तत्व है। तत्व का प्रतिपादन हम ऐसे नहीं करते, तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, ये तात्विक शास्त्र है, तो विशुद्ध तर्कणा से सिद्ध हुआ ये तर्क का तत्व का प्रतिपादन है। मैंने कोई यथार्थ कितना भी तर्क करे इस विषय में, तर्क शुद्ध बात आती है हमारी, ऐसी बात नहीं है कि बस फेंकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप कहीं से किसी भी एंगल से इनकी तलाश करो, उसका परीक्षण करो, उसकी जांच करो, हमारी बात पूरी नहीं है, सॉलिड है, नक्कर है, एक हार्ड फैक्ट है उसको बता रहे हैं, ऐसा करके वह ठोस बात करते हैं। मैं किस तरह से प्रश्न उठाने से नुकसान होता है कि जैसा प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, कि सिर्फ जानकारी के लिए प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, इसकी तो चर्चा करेंगे। प्रयोजन भूत विषय में प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, दूसरों के लिए प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, परलक्षीपना से प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। हमारी भूमिका में हमको प्रयोजन में काम आ जाए ऐसे प्रश्न उठाना चाहिए। प्रश्न वो है बहन जी का कि प्रश्न उठे और प्रश्न का समाधान लेने के देने के लिए सामने ज्ञानी पुरुष नहीं हुए, इस वक्त क्या करना चाहिए, एक उलझन है कि ऐसा भी होता है। तो उस वक्त हमारी जिज्ञासा को शांत नहीं करनी चाहिए, हमें जिज्ञासा के अशांति में रहना चाहिए। जब तक ज्ञानी पुरुष से हमें इसका यथार्थ समाधान प्राप्त नहीं हो, वहां तक हमारी अशांति, हमारी बेचैनी चालू रहनी चाहिए। जैसे कि ये जिज्ञासा है, उसको शास्त्रों में ज्ञानियों ने प्यास की उपमा दी है। क्या उपमा दी है? प्यास लगी है, ज्ञान की पिपासा। तो प्यास का क्या स्वभाव है? देखिए कि जब तक पानी नहीं मिले वो शांत होने वाली नहीं है, बढ़ती जाएगी। जितना काल पानी नहीं मिलने में जाएगा, उतना समय में वो पानी की प्यास बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ेगी कि एक अवसर ऐसा आएगा कि प्राण छूटने का प्रसंग आएगा। ऐसा ज्ञान पिपासा में भी होना जरूरी है। अब सुगानी जी का जिक्र आता है इस विषय में कि वो शांति की खोज में थे, आत्म शांति की प्यास लगी थी और शांति नहीं मिल रही थी, और वर्तमान जो विकल्पात्मक परिणाम चल रहा था उसमें उतना दुख, उतना दुख, उतना दुख लग रहा था कि या तो विकल्प हट जाए या शरीर छूट जाए, देह छूट जाए, ऐसी भूमिका में वो आ पहुंचे। ये जिज्ञासा की कहो, पिपासा की कहो, चरम सीमा है। भावना की कहो, ये भावना की चरम सीमा है। जब कोई भी जीव इस चरम सीमा तक पहुंचता है, तो बहन जी का प्रश्न तो बहुत अच्छा सुंदर आया है कि ऐसा कोई मुमुक्षु अपने जिज्ञासा की चरम सीमा में पहुंचता है, तब कुदरत को इसका रास्ता करना पड़ता है, कुदरत को अपना मार्ग बदलना पड़ता है, या कुदरत को उसकी दासी बनकर के उनकी सेवा करनी पड़ती है, और फिर वो सफल होता ही है। उसका निष्फल होने का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर तो सोनगढ़ से प्रचार के लिए जो आत्मधर्म भेजा जाता था, तो वो आत्मधर्म उनके यहां भी पहुंचा और वो पढ़ा। और ये गर्मी के दिनों में जैसे ठंडी लहर आती है, ऐसे एक लहर आ गई कि अरे शायद पानी मिलेगा तो यहां से मिलेगा, ठंडी हवा आती है, अवश्य कोई बड़ा जलाशय इस दिशा में होना चाहिए, इतनी ठंडी हवा आई कहां से। और फौरन सोनगढ़ गया, पहुंचे और अपना काम कर लिया।
क्या
पढ़ा
और क्या किया?
कब?
आत्मधर्म जब मिला।
आत्मधर्म जब मिला तब उन्होंने पढ़ा कि षट आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है। वो बात को पढ़ी थी, यानी वो बात पढ़ते ही उनको चौंक लगी थी कि हमारे जिनाद तो मूल दिगंबर थे, जिनागम पढ़ते थे, और जिनागम में शत आवश्यक श्रावक को होता है, वो बात प्रचलित है हमारे यहाँ। तो शत आवश्यक वो करते भी थे, पूजा आदि करते थे, पूजा स्वाध्याय दान आदि जो शत आवश्यक है वो करते थे, लेकिन विकल्प बढ़ते रहते थे। उन विकल्पों में शुभ भाव के उन विकल्पों में भी उनको दुख अनुभव होता रहता था। और उनकी चाहना थी निर्विकल्प शांति की, उनके लिए उनकी खोज थी। तो जो गुरुदेव का ये प्रवचन जबकि निश्चय प्रधान है, शताशत को सच्चे प्रकार के श्रावक के व्यवहार की चर्या है, और निश्चय प्रधान कथन हुआ कि सत आवश्यक नहीं है, एक ही आवश्यक है, और वो आवश्यक है आत्मा में शांति से थर जाना, जम जाना, रम जाना, यही एक आवश्यक है, शांति से जम जाना। अरे शांति की ऐसी बात करने वाले हैं, वास्तव में वो शांति के दूत होंगे, वो शांति की शांति प्रदान कर सकेंगे, हमको वहां जाना चाहिए। उन्होंने गुरुदेव के चित्र को अर्घ चढ़ाया, अपना निज कल्याण को अर्घ चढ़ाया। ऐसे बाहर में ऐसे बोले जाते हैं कि गुरुदेव के चित्र को अर्घ चढ़ाया, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने आत्म कल्याण और आत्म शांति को अर्घ चढ़ाया। इतना बहुमान आया और वो बहुमान लेकर के वहां पहुंचे, इतना विनय था कि जैसे भगवान को अर्घ चढ़ाया जाता है वैसे गुरुदेव को भगवान के रूप में देख लिया। वहां ही शांति को, शांति का दान देने वाले को भगवान के रूप में देखा और भगवान होने का चालू हो गया। यहां से भगवान होने के परिणाम चालू हो गए। वो सभी किसी को मालूम नहीं, आत्मधर्म कब आया और वो कब पहुंचे वो हिस्ट्री नहीं मिलती, लेकिन कुछ दिनों का अंतर होगा ऐसा अनुमान किया जा सकता है। वो तो वही जाने वो बात जरूर है कि जहां तक उनको शांति नहीं मिली होगी वहां तक उनको कहीं रात और दिन चैन हुआ नहीं होगा, नींद भी नहीं आई होगी, खाने का भी कोई ख्याल पूरा नहीं रहता होगा, वो एक ही शांति की खोज में लगे हुए थे कि कहीं भी उनको चैन नहीं हुआ होगा, ये बात अनुमान कर सकते हैं। जी क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है आपका? हाँ हाँ ये तो इस भूमिका में आने से ही समझ पड़ती है इस बात की। जहां तक हमारी ऐसी भूमिका नहीं होती वहां तक इस बात का एहसास होना बहुत मुश्किल है। देखिए हमने एक किताब पढ़ी थी, किताब तो मेडिकल साइंस की थी, उसमें क्या बात थी कि एक आदमी को कैंसर हुआ था, आदमी ने अपना एड्रेस बेड्रेस नाम मान सब दिया था, वो बंबई में ठहरता था, वो बंबई में ही उनका इलाज होता है, टाटा के परेली में जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ कैंसर का इलाज होता है। तो उसको लीवर कैंसर हुआ था, लीवर का कैंसर हुआ था, तो वहाँ जहाँ पहुँचे टाटा के हॉस्पिटल में, वहाँ उनको जो भी पहले तो बोला कि इसका कोई इलाज है ही नहीं, लेकिन हम जो कुछ करते हैं तो कोई प्राथमिक स्टेज में होता है तो शायद लंबा टाइम निकल सकता है, लेकिन आखिर में तो मर जाता है। अभी तक कैंसर का कोई इलाज नहीं है। तो बोला कि जो भी होता है वो करना पड़े, जो हो सकता है वो करें। जल्दी तो किसी को मरना नहीं है, जितना भी लेट हो अच्छा है। वो गए, इलाज भी कराया, इलाज का कोर्स खत्म हुआ, डॉक्टर ने बता दिया कि आप अपने घर जा सकते हैं, आप जाइए, भगवान का नाम लीजिए, कुछ दिनों जो भी आपके बाकी है भगवान का नाम लेते रहिए। इस विश्व में तो कोई फिर इसका कोई इलाज तो अभी तक है ही नहीं। वो आदमी अपने घर जा पहुंचा, किसी ने उसको कोई इलाज बताया, वो इलाज उसने किया और आदमी बच गया। बच गया नहीं, हट्टा कट्टा हो गया। और फिर वो अस्पताल जा पहुंचा, जिस डॉक्टर से इलाज करवाया था उनसे मिला। वो मिला तो बोले कि डॉक्टर साहब मुझे पहचाना, तो पहले तो डॉक्टर घूर घूर के देखने लगा। और वो कांति भाई आप तो नहीं है, नाम कांति भाई था शायद, तो हाँ मैं ही कांति भाई हूँ, मैं कोई कांति भाई का भूत नहीं हूं। क्या बोला वो, क्योंकि आदमी मर जाना है तो भूत बन के आता है ना। तो डॉक्टर ने तो उनको बोल दिया था कि तुम मर जाएगा कुछ दिनों में, 15 दिन महीने में तुम मर जाएगा। और 6 महीने के बाद वो पहुंचा, और ऐसा हटा कटा होकर के पहुंचा था। तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखो मैं खुद कांति भाई हूं, मैं कांति भाई का भूत नहीं हूं, मैंने ऐसा इलाज किया और मैं बच गया हूं, आप तो कहने के लिए आया हूं। बोले कि अच्छा ये बात कैसे बनी, हमारे दिमाग में तो ये सेट नहीं होता है। तो देखिए मैं इस जगह पे रहता हूँ, एक चाल है, बम्बई में चाल होती है ना, एक साथ बड़ी बिल्डिंग में सब साथ में रहते हैं। हमारे ऊपर के मजले में एक आदमी रहता है, तो उसने ऐसा नहीं कहा जिसने इलाज बताया, वो पड़ोसी था, इसका पड़ोसी था। मैं तो वैसे ही मरने की हालत में घर में सो रहा था। एक दिन सुबह सुबह एक ऊपर से आकाश में से मुझे सजीवन करने के लिए भगवान जैसा फिरस्ता आया। क्या आया, फिरस्ता आया ऐसा बोला, और मुस्लिम ने ऐसा इलाज बताया, मैंने कर लिया। बाद में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, आज मैं इस हालत में आपके सामने खड़ा हूं। तो उसने पड़ोसी शब्द नहीं बोला, वैद्य डॉक्टर हकीम शब्द नहीं बोला, क्या बोला, फिरस्ता बोला। तो जो मृत्यु के मुख से बचता है और जिंदा रहता है, उसको बचाने वाले को क्या कहना वो भी जानता है। चाहे उसको विवेक कहो, चाहे उसको अविवेक कहो, वो तो आप जानो है? मैं आपको एक और सवाल पूछूं, समय तो होने जा रहा है, 1-2 मिनट में खत्म करूंगा, कि आप समुद्र के बीच में डूब रहे हैं, चारों ओर दसों दिशा में पानी 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 के सिवा किनारा नजीक ने देख नहीं रहे हैं, मीलों तक पानी पानी भरा है, और तिरने वाले की गुंजाइश भी कितने, 2-4-6 घंटे में तो अच्छे अच्छे तिरने वाले भी थक जाते हैं, तो ये तो कितने दिन तक तेरे तो भी किनारा मिलने वाला नहीं था। मृत्यु निश्चित है, ऐसे घड़ी बहुत समीप में देखने में आती है, कि मरना पड़ेगा ही मरना पड़ेगा। और वो तिरते तिरते थक गया तो बस अब तो आंख मीच देना पड़ेगा, डूब जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे में एक हेलीकॉप्टर का आवाज आया, पर उसने रस्सी से बांधकर एक कुर्सी नीचे भेजी, हाँ, और ऊपर से आवाज दिया कि भैया बैठ जाओ इसमें, मैं ऊपर तुमको ले जाता हूं, ले लेता हूं। तो हम तर्क लगाएंगे कि ये कौन होगा, मनुष्य होगा या देव होगा या जानवर होगा या स्वरूप होगा या कुरूप होगा, नीच जाति का होगा उच्च जाति का होगा, कौन होगा। वो तो बिना देखे कहेगा कि ये मेरे लिए भगवान है, क्या करेगा। बस ऐसा होता है जब कोई संसार समुद्र के बीच में अपने को डूबता हुआ एहसास करता है, अनुभव करता है कि मैं डूब रहा हूं, इसमें कोई बचाने वाला मिलता है तो उसको भगवान के रूप में देखते हैं, सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं देखते हैं। तो उस भूमिका में आना पड़ेगा, तभी विवेक अविवेक का पता चलेगा। समय हो गया है, कल विषय लेंगे आगे का।